ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहजा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 2 मई 2021 बरोज इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मतलब के गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून दायमी सजा सुनहरी मतन यसाया। और अब ए याकूब खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इसराइल तुझको बनाया यूं फरमाता है कि खौफ ना कर क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जवाबी मतालिया लूका। तो देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी ये जानकर कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है संगमरमर के इत्रदान में इत्र लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सर के बालों से उन्हें पूंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर अतर डाला। उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है कौन और कैसी औरत है क्योंकि बदचलन है। और उस औरत की तरफ फिरकर उसने शमाउन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पाँव धोने को पानी न दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पूछे। तूने मुझे बोसा ना दिया, मगर इसने जब से मैं आया हूँ मेरे पाँव चूमना ना छोड़े। तूने मेरे सर पर तेल ना डाला, मगर इसने मेरे पाँव पर इत्र डाला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत थे मुआफ़ हुए क्योंकि इसने बहुत मोहब्बत की, मगर जिसके थोड़े गुनाह मुआफ़ हुए वो थोड़ी मोहब्बत करता है। और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। दरसीवाज बाइबल में से यर्मिया। खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। यूएल। लेकिन खुदावंद फरमाता है कि अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाख करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो क्योंकि वो रहीम मेहरबान कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। और उन बरसों का हासिल जो तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौज मरख निगल गई और खाकर चट कर गई तुमको वापस दूंगा। तब तुम जानोगे कि मैं इसराइल के दरमियान हूँ, मैं खुदा हूँ तुम्हारा खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं। यसाया। मैं ही हूँ जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूँ और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। लूका। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा। लूका। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गेंसरत की झील के किनारे खड़ा था तो ऐसा हुआ, जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाउन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। दोनों कश्तियाँ यहाँ तक भर दी कि डूबने लगीं। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पाँव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। फिर लावी ने अपने घर में उसकी बड़ी ज़ियाफ़त की और महसूल लेने वालों और औरों का जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे बड़ा मजमा था। और फरीसी और उनके फकी उसके शागिर्दों से ये कहकर बुड़बुड़ाने लगे कि तुम क्यों महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ खाते पीते हो। यसू ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। लूका। सब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के 22 आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूरदराज मुल्क को रवाना हुआ और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सुअर चराने भेजा और उसे आरजू थी कि जो फलियाँ सुअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊँ, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने वर्षों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा बेटा आया जिसने तेरा माल कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह करा दिया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। जबूर। मैं खोई हुई भेड़ की मानद भटक गया हूं। जबूर। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, क्योंकि तू मेरा निजात देने वाला खुदा है। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा, क्योंकि वो अजल से हैं। मेरी जवानी की ख़ताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। खुदावंद नेक और रास्त है, इसलिए वो गुनाहगारों को राह हक़ की तालीम देगा। यसाया। शरीर अपनी राह को तर्क करे और बदकार अपने ख्यालों को, और वो खुदावंद की तरफ फिरे और वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ, क्योंकि वो कसरत से मुआफ़ करेगा। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। यसाया। मैंने तुझे बनाया, मैंने तेरी खताओं को घटा की मानद और तेरे गुनाहों को बादल की मानद मिटा डाला। मेरे पास वापिस आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। اب میں میری بیک ریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ محبت کا نمونہ گناہگار کی اصلاح ہے۔ الہی محبت انسان کی اصلاح کرتی اور اس پر حکمرانی کرتی ہے۔ انسان معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن صرف الہی اصول ہی گناہگار کی اصلاح کرتا ہے۔ گناہ کے نتیجے میں تکالیف کا موجب بننا گناہ کو تباہ کرنے کا وسیلہ ہے۔ گناہ میں ملنے والی ہر فرضی تسکین اس کے متوازی درد سے زیادہ آراستہ ہوگی، جب تک کہ مادی زندگی اور گناہ پر یقین تباہ نہیں کر دیا جاتا۔ آسمان یعنی ہستی کی ہم آہنگی پر پہنچنے کے لیے ہمیں الہی اصول کی ہستی کو سمجھنا ہوگا۔ خدا محبت ہے، اس سے زیادہ ہم مانگ نہیں سکتے، اس سے اونچا ہم دیکھ نہیں سکتے اور اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ یہ فرض کرنا کہ جیسے خدا کا رحم مطلوب یا غیر مطلوب ہوتا ہے، اسی کے مطابق خدا گناہ کو معاف کرتا یا سزا دیتا ہے، محبت کی غلط سمجھ ہے، اور یہ اپنے غلط اعمال کے لیے دعا کو حفاظتی در بنانے کے مترادف ہے۔ یہ لوکا کی انجیل کے ساتویں باب میں اس سے منسلک کیا گیا ہے کہ ایک بار یسوع کسی فریسی بنام شمعون کے گھر کا مہمان خصوصی بنا۔ وہ شمعون شاگرد بالکل نہیں تھا۔ جب وہ کھانا کھا رہے تھے، ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا، جیسے کہ یہ مشرقی مہمان نوازی کے فہم میں رکاوٹ بنا ہو۔ ایک اجنبی عورت اندر آئی۔ یہ عورت مریم مگدلینی، جیسا کہ اسے یہی بلایا جاتا تھا، یسوع کے پاس پہنچی۔ کیا یسوع نے اس عورت کو حقارت کی نظر سے دیکھا؟ کیا اس نے اس کی عقیدت کو روک دیا؟ نہیں، اس نے نہایت شفقت کے ساتھ اس کی تعریف کی، اور ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ سب جانتے ہوئے جو اس کے ارد گرد کھڑے لوگ اپنے دلوں میں سوچ رہے تھے، خاص طور پر میزبان کے دل میں، وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ایک نبی ہوتے ہوئے مہمان خصوصی ایک دم سے اس عورت کے اخلاقی درجے کو نہیں جانچ پایا اور اسے دور ہٹنے کو نہیں کہا۔ یہ سب جانتے ہوئے یسوع نے انہیں ایک مختصر تمثیل یا کہانی کے ساتھ ملامت کیا اور یوں سب کے لیے ایک سبق دیا، جس کے بعد اس عورت کے لیے یہ شاندار اعلان دیا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس نے اس کے الہی محبت کے قرض کو کیوں معاف کر دیا؟ کیا اس نے توبہ کی اور تبدیل ہوئی؟ اور کیا اس کی بصیرت نے اس بے ساختہ اخلاقی شورش کو بھانپ لیا؟ اس کے پاؤں پر عطر لگانے سے پہلے اس نے اپنے آنسوؤں سے انہیں دھویا۔ دوسرے ثبوتوں کی غیر موجودگی میں اس کی معافی، تبدیلی اور دانش میں ترقی کی توقع کے لیے کیا اس کا غم موزوں ثبوت تھا؟ اس قسم کے ناقابل بیان احساس کے لیے کس کو بلند خراج تحسین جائے گا؟ فریسی کی مہمان نوازی کو یا مگدلینی کی ندامت کو؟ یسوع نے اس سوال کا جواب خود کار راست باز کی ملامت اور تائب کی رہائی کا اعلان کرنے سے دیا۔ سچائی یعنی خدا غلطی کا باپ نہیں ہے۔ گناہ، بیماری اور موت کی درجہ بندی بطور غلطی کے اثرات ہونی چاہیے۔ مسیح گناہ پر عقیدے کو نیست کرنے آیا۔ ہم گناہ کی تباہی اور اس روحانی فہم میں خدا کی معافی کو تسلیم کرتے ہیں جو بدی کو بطور غیر حقیقی باہر نکالتا ہے، لیکن گناہ پر یقین تب تک سزا پاتا ہے جب تک یہ یقین ختم نہیں ہو جاتا۔ اس لحاظ اس سمجھ سے پیدا ہوتی ہے کہ بدی میں کوئی قائم رہنے والا اطمینان نہیں ہے، اور سائنس کے مطابق یہ اطمینان اچھائی کے لیے ہمدردی رکھنے سے پیدا ہوتا ہے، جو اس لافانی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نہ خوشی، نہ درد، نہ بھوک، نہ جذبہ مادے سے یا مادے میں وجود رکھ سکتا ہے، جبکہ الہی عقل خوشی، درد یا خوف اور انسانی عقل کی تمام تر گناہ آلود بھوک کے جھوٹے عقائد کو نیست کر سکتا ہے۔ بعض اوقات بدی انسان کا سب سے زیادہ درست تصور ہوتا ہے، جب تک کہ اچھائی پر اس کی گرفت مضبوط نہیں ہو جاتی۔ پھر وہ بدی پر اپنا دباؤ کھو دیتا ہے اور یہ اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ गुनाह की तकलीफ से बचने का तरीका गुनाह को तर्क करना है, और कोई राह नहीं है। ये एहसास कि गुनाह में हकीकी खुशी नहीं है, क्रिश्चियन साइंस की इलाहियात के सबसे अहम नकात में से एक है। गुनाह के इस नए और हकीकी मंजर को गुनाहगार पर उजागर करें, उस पर जाहिर करें कि गुनाह कोई इत्मीनान नहीं बख्शता, और ये इल्म उसकी अखलाकी हिम्मत को मजबूत करता है और बदी पर फतह पाने और अच्छाई से मोहब्बत करने की उसकी काबिलियत को फ़रोग देता है। बुनियादी गलती फ़ानी अकल है। एक अखलाकी सवाल बीमार की शिफा में रुकावट बन सकता है। पोशीदा गलती, शहवत, हसद, बदला, बदनीयती या नफरत बीमारी पर ईमान को मुस्तकिल बना सकता या हत्ता के पैदा भी कर सकता है। हर किस्म की गलतियां इस सिमत में रुझान रखती हैं, आपका असल मकसद दुश्मन को फना करना और मैदान खुदा, जिंदगी, सच्चाई और मोहब्बत के लिए छोड़ देना है। ये याद रखते हुए कि खुदा और उसके ख्यालात अकेले हकीकी और हम आहंग हैं। इंसान की दानिश गुनाह में तस्कीन नहीं पाती, क्योंकि खुदा ने गुनाह को दुख सहने की सजा सुनाई है। गुजरे हुए कल की जादूगरी ने आज की तनवीम और मदहोशी की पेशगोई की। शराबी सोचता है कि वो नशे से खुश होता है, और आप किसी मस्त शराबी से उसकी खबती छुड़ा नहीं सकते जब तक कि उसकी खुशी का जिस्मानी फहम एक बुलंद फहम को कबूल नहीं करता। फिर वो अपने जाम से दूर हटता है, जैसे डरा हुआ ख्वाब देखने वाला शख्स जो किसी बदखाही से जाग जाता है, जो मस्क शुदा फहम की तकलीफ़ों के नरगे में होता है। इसमें खुशी पाते हुए और महज नतायज से खौफजदा होकर इससे परहेज़ करते हुए जो शख्स गलत काम करना पसंद करता है, वो ना तो एतदाल पसंद शख्स है और ना ही एक काबिल एतबार मज़हब पसंद शख्स है। मादे की फर्जी ज़िंदगी पर अकीदे के तेज तरीन तजर्बात, इसके अलावा हमारी मायूसियाँ और ना ख़त्म होने वाली परेशानियाँ हमें इलाही मोहब्बत की बाहों में थके हुए बच्चों की मानद पहुँचाते हैं। जब हम इलाही के साथ अपने रिश्ते को मुकम्मल तौर पर समझते हैं, तो हम कोई और अकल नहीं रखते माँ सिवाय उसकी अकल के, कोई और मोहब्बत, हिकमत या सच्चाई नहीं रखते, ज़िंदगी का कोई और फहम नहीं रखते, और मादे या गलती की वजूदियत का कोई और शाऊर नहीं रखते। गुनाह की तबाही मुआफ़ी का इलाही तरीक़ाकार है। इलाही ज़िंदगी मौत को तबाह करती है, सच्चाई गलती को नेस्त करती है और मोहब्बत नफ़रत को नेस्त करती है। तबाह होने के बाद गुनाह को माफ़ी की किसी और सूरत की ज़रूरत नहीं रहती। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरियाँ साइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुजम्मतों, इसलाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वह हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे, और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।